तो श्रवण है ये क्रिया का मूल। श्रवण यदि असत हुआ, सुनने की चीज अगर बुरी हुई तो जीवन बुरा हो जाएगा। इसलिए बुरे श्रवण से निरंतर बचे। श्रवण कथायाम हस्त कर्म से मनुष्य बाद हाथ हाथ भगवान की सेवा करने में लगे। हाथों के द्वारा ऐसा कोई काम न हो जो विषय सेवन का हो और जो पर अहित का हो। हाथों के द्वारा भगवान की सेवा बने और मनुष्य का दूर न। ये मन हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। नमालूम इसमें कितने कितने कल्पों की, कितने कितने जन्मों की, कितनी बातें भरी हैं, कितने संस्कार भरे हैं। हम वाणी से मौन भी रह गए और मन से मौन नहीं रहे। मन हमारा निरंतर विषयों को ग्रहण करता रहा, चिंतन करता रहा, तो जीवन ठीक बनेगा नहीं। मनुष्य पा रही है, मन जो है ये नल के ऊपर मन दिन कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मन आपके चरणों में ही हमारा लगा रहे, चरण कमलों की स्मृति में रम जा। भगवत चरणार विंद के अतिरिक्त से दूसरे किसी विषय के लिए मन में स्थान न रहे। ये साधना की उच्च भूमिका, लेकिन पहले पहले लगाने का प्रयत्न करो। मन को भगवत चरणारविंद में लगाओ। मन ममता की वस्तु भगवान के चरण बना ले, सेवन की वस्तु भगवान के चरण बना ले और चरण धन भगवान के चरणों को बना ले। भगवत चरणारविंद ही हृदय में रखने योग्य है, बाकी हृदय में रखने योग्य कुछ नहीं। बाकी का सारा मल है। बाहर से धो पूछ कर साफ हो जाए, बड़े स्वच्छ बन जाए, सुंदर कपड़े पहन लें, अंदर हमारे नल भरा रहे। अगर किसी पाखाने की दीवार को सजा दिया जाए, खुद बाहर से सजा दिया जाए, लीप पोत दिया जाए, चित्रकारी कर दी जाए, सुंदर बना दिया जाए और अंदर का मल साफ न किया जाए तो क्या होगा? बाहर की सजावट से कुछ नहीं बनता। तो सजना चाहिए मन, स्वच्छ होना चाहिए मन, संस्कृत होना चाहिए मन और सुशोभित होना चाहिए मन। तो जगत का पूरा करकट, ये भोग चिंता, ये जब तक मन में भरी है, जब तक हमें स्मरण होता है भोगों का, तब तक मन में हमारे मल भरा है। तो मन को ऐसा बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान कृपा करके इस प्रकार का मन बना दो कि जिस मन के द्वारा भगवान का ही स्मरण हो, भगवान के चरणों में मन जाकर रम जा। यही जो प्रेमी जन है उनका जो स्वरूप होता है, प्रेमी जन के पैरों हृदय में भगवान क्यों रहते हैं, इसका बड़ा एक ठीक उदाहरण है। इसमें श्री राधा के रूप की व्याख्या नहीं होती, बहुत मोटी बात है, क्योंकि ये राधा नहीं बहुत बहुत लोगों में हो सकती है, पर ये मोटी स्थूल भक्ति वालों के लिए स्थूल बात राधा ने आरोपित करके बताई जाएगी। ये एक समय के बाद भगवान द्वारिका से ये ग्रह पर स्नान करने के लिए पधारे तीर्थ में, तो उसी समय वहां पर श्री गोपाल नारायण नंद बाबा यशोदा मैया इत्यादि भी गए। तो गए तो वहां पता लगा कि वो राधा जी आए हैं, प्रमाण गोपाल नारायण आए हैं। तो द्वारका की पटवानी की बड़ी इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करें, क्योंकि ये द्वारका में जब तक कहीं बात चलती श्री गोपांगनाएं थी राधा जी की, तो भगवान ये प्रेम दुर्बल हो जाते, उनके रोमांच हो जाता, प्रेमाश्रुपात होने लगते और वे आनंद में भर जाते, विषाद करने लगते उनके वियोग का, तो श्री रुक्मिणी आदि पठवानी सत्यभामा आदि व्यक्ति क्या बात है, उन्होंने क्या चीज है, हमारे में क्या नहीं कुछ बताते तो है नहीं, ये तो क्या बात है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि कभी मौका लगे तो हम दर्शन करें उनको। तो श्री कृष्ण ने कहा आज कि भाई रुक्मिणी से कहा, सत्यभामा जी से कहा कि ये सब बजेदारी लोग आए हैं, उनके साथ शायद राधा देवी हैं, गोपांगनाएं भी हैं, तुम एक दर्शन कर लिया तुम्हारी इच्छा हो तो ये भगवान के पत्र महिषियां पटवानी दर्शन अर्थ बोले तक सत्यभामा जी उनको बड़ा अभिमान था, अपने सौंदर्य गर्व का बड़ा अभिमान था। ये भी सबने देखा राधा जी की करने की वंदना की भक्ति भाव थी, इनमें ईर्ष्या नहीं, इनमें किसी प्रकार का चाह नहीं, बड़े भक्तिभाव से ये हमारे प्राण प्रियतम की प्रियसियां हैं, तो बड़े भक्तिभाव से उन लोगों ने चरण वंदना की। राधा जी के उस अप्रतिम विग्रह को देखकर सत्यभामा जी मूर्छित हो गए, जागी बड़ी सेवा की और फिर उनको किसी प्रकार अपने यहां लेवा चला। रुक्मिणी जी आए, सभी उनकी सेवा में लग गई, सेवा हो गई, संध्या का समय हुआ, वो अपने बेड़े पर लौट गई, वो अपने बेड़े पर रह गई। रात्रि का समय भगवान श्याम सुंदर शयन कक्ष में बधारे, पलंग पर सोए। नित्य का नियम था रुक्मिणी जी नित्य आती भगवत चरणारविंद में प्रणाम करती, प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेती, चरण दबाती। अब जब चरण दर्शन करने के लिए आए तो चरणों के दर्शन किए, देखा कि भगवान के पद तल में पैरों के तलवे में फाले बड़े बड़े फठोले हो रहे हैं, बड़े बड़े फठोले हो रहे हैं। बड़ा दुख हुआ रुक्मिणी जी को, क्या हो गया, कहीं आग पर पैर रखा गया, आग पर तो कहीं पैर रखा नहीं गया, कहीं गए नहीं, बीमारी तो कभी उनकी होती नहीं, क्या हो गया, क्या बात है, दुखी रहने विषादग्रस्त हो गई। भगवान तो सब जानते ही थे, पूछा रुक्मिणी जी उदास क्यों हो, मेरे महाराज की पैर में फठोले हो गए, ये कैसे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे नहीं ऐसे ही हो गए, कोई बात नहीं। बोल महाराज मैं युद्ध योग्य हूँ, बताने के लायक हूँ, अधिकारी हूँ तो बताइए क्या कारण है। तो बात बदल दिया, नहीं ऐसे ही हो गए, तुमने गई थी ना वहां पर, बात तो वही कहते हैं बदली नहीं, तुमने गई थी महाराज, बोले हाँ महाराज गई थी, देखा इनका भाव और इनका बड़ा विचित्र भाव है, ये तो नाम सुनते गदगद हो गई, जब देखा तो हम लोग गई हैं तो वे हम लोगों के चरणों पर गिरने लगी और नारायण उनके भाव कितने ऊंचे, हमको उनको देख देख करके और दुर्बल होने अपने को धिकार देने लगी। तो क्या फिर उनको लाई भी अपने यहां बनहा है, लाई थी, उनकी सेवा की, सत्कार किया, बोले फिर वो रुक गई, बोले शाम को लौट गई, खिलाया पिलाया, भोजन को सुन तैयार हुआ नहीं था, दूध सबको चलाया, दूध चलाया बना, ऐसा दूध था, बोले महाराज गर्मा गर्म दूध था, उसमें पेपर डाली और कस्तूरी डाली, बड़ा सुंदर दूध रहा, गरम गरम दूध उन्होंने पिया, जाड़ों की मौसम थी। तो बोले रुक्मिणी बताऊ, बताओ, बोले तुम्हारे दूध में हमारे चरणों में फठोले पड़ते, महाराज दूध तो वहां था, आप यहां फठोले चरणों में कैसे दूध कर लगा कैसे, अरे वो दूध राधा ने पिया न, गरम गरम दूध था जलता हुआ, राधा ने तुम्हारी दूध चीज की अपेक्षा की नहीं, वो पी गई और उसके हृदय में रहते निरंतर मेरे में चरना रही, भाग से नहीं प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, साकार रूप से रहते हैं, तो गरम दूध का ताप लग के मेरे चरण जल गए और उसके फठोले रुक्मिणी जी तो सुन करके अबाक रह गई, तो तुम लोगों में ये भाव कहां है, ये बहुत ऊंची बात नहीं है, राधा जी का स्वरूप तो इससे कहीं कहीं ऊंचा और वचन वचन थे। तो भगवत चरणारविंद का ही मन में सदा के लिए विराजित हो जाना, भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त मन में कुछ रहे ही नहीं, ये है मन की वास्तविक सुंदर स्थिति। तो मनुष्य बता रहे और नहीं, ये प्रार्थना करते हैं मेरे सुंदर गृह के नगरन, हमारी वाणी आपके दिन के समय लगे, वाणी विज्ञान का समय हमारे कान आपके मीरा कथा श्रवण लगे, श्रवण कथाया हस्त कर्म से हाथ आपकी सेवा में लगे और मन आपके चरणों में ही चरणों की स्मृति में ही चरणों में रम जाए। वहां कहते हैं पशुस्थल निवास जगत प्रणाम और शो जो है इस जगत में आपको देखकर आपके शिव गृह को देखकर और आपके सूर्य भूत आपके भक्तों को देखकर किसी के दर्शन में लगे। हमारी आंखें जो हैं ये विषयों को देखने के लिए बड़ी लालायित रहती है। किसी मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में भगवत भाव नहीं देखते, श्रृंगार देखते हैं। किसके यहां श्रृंगार कैसा है, जिसके यहां श्रृंगार ज्यादा है वो तो बड़ा सुंदर, और श्रृंगार नहीं है केवल प्रेम के आंसू बह रहे हैं उस मंदिर में धर्म रचित नहीं जाए। तो हमारी आंखें विषय दर्शन में इतनी प्रवीण है कि वो जहां तहां केवल विषयों को देखना चाहती है, किसका कपड़ा कैसा है, किसका मकान कैसा है, किसका गहना कैसा है, ये नहीं देखते किसके हृदय में कितना भगवत भाव है। जिसके हृदय में भगवत भाव है वो दर्शनीय है, उसकी चरणों की धूल दर्शनीय है। ये ब्रज गोपिकाओं के पास था क्या हिरण्या थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उद्धव जी ने आकांक्षा की कि उनके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ती रहे। देवत्व की आकांक्षा नहीं की उद्धव ने, उद्धव ने आकांक्षा की जगत्व की, जड़ वृक्ष बन जाए और उनकी चरण धूल पड़े तो क्या बात, उनके मन में भगवान बसे। तो हमारी आंखें कि भोगों को देखती है और भोगों की ओर बड़ी ललचाई आंखों से देखती है, भोगों की ओर देखने में चित्त की प्रवृत्ति होती है और भोग दिखाया जाता है मेरे सजाव सजावट करो, जितनी प्रदर्शन होता है ना प्रदर्शन, प्रदर्शन शुद्ध भाव नहीं हुआ करते, शुद्ध भाव जो है इनके प्रदर्शन नहीं होते तो जीवन में उतारे जाते हैं और दिखाए जाते हैं जो वो भोग ही दिखाए जाते हैं। इनमें श्रेणी का भेद होता है, कोई जो है उच्च श्रेणी के भोग होते हैं तो अत्यंत निम्न श्रेणी के, पर भोग दर्शन में हमारी आंखें बहुत मिलती हैं। तो मनकुंबर मनोगुरु तो इस बात के सब अनुभवी थे ना, इनकी वाणी लगी रहती थी असत चर्चा में, इनके गान लगे रहते थे बुरे गीतों के श्रवण में, इनके हाथ लगे रहते थे भोग सेवा में, इनके मन निरंतर रहती थी भोग वासना, और वो इनकी आंखें निरंतर देखा करती थी भोगों को। तो अपने बहाने वो सारे जगत का कल्याण करने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करो, हम कुछ सेवा का अधिकारी नहीं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, हमारे कान आपके गुण श्रवण में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा हमारे मन केवल आपके चरणों की स्मृति में ही विलीन हो जाए, हमारा सिर सारे जगत में जगत में निवास करने वाले आपके चरणों में प्रणमित हो, आपके भक्तों के दर्शन नहीं करते रहें। ये उन्होंने वरदान मांगा। बोले भाई इसका फल क्या चाहते हो, बोले कुछ नहीं महाराज, वंशा वही सुमत ना परमार्थ बंधु उत्पाद पंकज पराग निशूर श्रीवास, मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं चाहिए, बस कितनी अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों से झरते हुए मकरंद का जो निरंतर पान करते हैं उन भक्तों का संग नहीं मिलता, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना कहा, इतना कह करके तो उनको तो ये भय हुआ कि कहीं ये देश बालक उनकी बाल लीला के खेल में हमने विघ्न डाला, ये कहीं भक्ता अपराध हो रहा है तो भाग गए यहां से। इतना सुखदेव जी कहते उत्तम संस्कृत प्रस्ताव का ध्यान भगवान रूपेश्वर ब्राह्मणा सूर्य खलो बद्धा प्रसन्न जी कल। अब भगवान जो सब बाल लीला माधुर्य में संलग्न थे, अब तत्काल उनकी जो ऐसी शक्ति लीला शक्ति ऐश्वर्य शक्ति वो मानो तुरंत जाग उठी, तुरंत जाग उठी और भगवान बड़ी देरी खिजने की देर है, लीला शक्ति में जिस समय वो लीला मंच की देरी थी थी तब हट गया, यवनिका दूसरी आ गई, नाच तो होता है वो देरी थी थी दूसरा कर रहा आ गया दृष्टि लग रहा, और वो शोषण लीला में निमग्न रहे श्री कृष्ण चंद्र वो क्षण भर के लिए मानो ऐश्वर्य के पद पर आ गिरा गए, अपने भक्ति के महिमा का दान करने के लिए और अपने श्रीमुख से कुवर्त केन्द्र कुछ आदेश देने के लिए और उनके कानून अपनी वाणी का अमृत भर देने के लिए और उनकी निरंतर की वांछा पूर्ण कर देने के लिए भगवान के अधर्म से हंसी आ गई और भगवान बोले। भगवान हंसियाने का एक कारण ये भी कि आज ये अनोखा मिलन है जो इतिहास में कहीं नहीं, हमेशा भगवान मुक्त रहते हैं और बद्ध जीव भगवान की स्तुति किया करते हैं, भगवान से प्रार्थना किया करते हैं, ऐसा होता है ना बद्ध जीव भगवान के से प्रार्थना करते हैं और भगवान मुक्त रहते हैं। आज भगवान बद्ध हैं, उखल से बंधे हैं, तेज बना है और ये जीव आज मुक्त है, दक्षिण से मुक्त हो गए स्तुति कर रहे हैं। विपरीत अवस्था को देख करके भगवान को मुस्कुराहट आ गई कि देखो आज ये विचित्र स्थिति है, तो भगवान ने कहा उनसे, भगवान मुस्कुरा कर बोले श्री भगवान वाच ज्ञातम देते दृष्णाम करुणात्मना ये श्रीमदांधुर्वाद्रेशो अनुग्रह कृत साधूना समचित्ता सुतरामचास्मना दर्शनान्नो भवेद्बन्ध पूर्वथा तद्गच्छतम् मत्कर्मैर्नलकूबरसाधन सञ्जातो निर्भावो वानुचितः परमो भवः। भगवान मुस्कुराकर बोले, बोले कुबेर पुत्र सुनो, मैं पहले ही जानता हूं इस घटना को, बहुत पहले से मैं जानता हूं तुम जो थे ये श्रीमदांध थे, धन के मद में चूर हो रहे थे, धन के नशे में तुम अंधे थे, तो तुम पे कृपा करने के लिए तुम्हारे मद दोष को दूर करने के लिए, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए देवर्षि ने तुम पर कृपा की और साथ के रूप में तुमको उचित औषधि दे करके तुमको श्रीमद से भ्रष्ट कर दिया, इसे मुझे पता। अब इन ऋषि की कृपा से अब तुम्हारे भगत प्रवाह का अंत हो गया, ये भगत प्रवाह में सब बह रहे हैं, भव सागर का ये विष्णु बह रहे हैं, मरते हैं जन्मते हैं, संसार में आते हैं फिर जाते हैं, मिलता है मिलना है बिछड़ना है। तुमने भगवान ने कहा कि अब भय कुबेर पुत्र तुम जाओ, तुम्हारे भगत प्रवाह का अंत हो गया, ये भी देवर्षि के तुम पर कृपा उन्हीं का प्रसाद अनुग्रह समझो, असल में तुम मित्र उस दिन हो गए जिस दिन तुमको उनके दर्शन हुए, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार नेत्र का सारा विलुप्त हो जाता है, वैसे ही जो समचित्त हैं, जो भगवान में एकांत निष्ठा वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते ही यथार्थ में उसी समय जीव का अंधकार भय बंधन नष्ट हो जाता है। उन्होंने तो उसी में ले गया, उनको जो वृक्ष की योग दी गई ये तो भय बंधन बताने के लिए नहीं, मेरे परम प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए। भय बंधन नष्ट हो रहा है दूसरी बात, उसमें मुक्ति मिलती है, मुक्ति भगवान भगवान को देते हैं, परंतु भगवान का प्रेम मिलना ये बड़ा दुष्कर है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ने ये तुमको तुम पर बड़ी कृपा की, तुमको जो चढ़ी होने की दुखी होने की प्राप्ति कराई, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बंधन कट गया, बंधन तो उसी समय कट गया, ये तो मेरी जो पराभक्ति है परमाभक्ति कोरणाभक्ति उसकी प्राप्ति के लिए। महापुरुषों का महात्माओं का सच्ची महात्माओं का सदा किसी को समागम हो जाए फिर बंधन होगा यह संभव बात, सारे बंधन तुम्हारे टूट गए और अब तुमको मेरी जो अनंग रति हो वो भी प्राप्त हो गई, हो गई जो तुम चाहते थे, अब तुम्हें संसार में फिर से पतन होने का कोई भय नहीं रहा, तुम अनंत काल तक निज में परायण हो रहोगे, तुम अपने भवन को जाओ। सब बोले हरि करुणा धाम पूरन भयो तुम्हारे काम, नारद पुनतम भक्त हमारे तुम पर किए अनुग्रह भारे, नो भक्तन को जो सुधार जैसे उदित हो जनराज, सहदेवती लड़को हरे अगर बहुत मंगल विस्तरी, उन बोले हरि सुरवंशी हो मन कूबर हो मनग्रीर, अब तुम गगन भवन को करो ये माया डर के दिन डरो, जाओ नलकूबर मनग्री कतार से हो रहे, उनके प्राण हर्षा अतिरेक से सच्चे आनंद से दूसरा नहीं सच्चा आनंद नहीं जो अब मिलता है कल चला जाता है और अंत में जो विष का काम देता है, जितने भी भोग के आनंद हैं वो भोग काल में मालूम होते हैं शरीर के मीठे, उनका फल होता है विष के समान। तो नलकूबर और नलकूबर और मनिगरी ये आज कृतार्थ हो गए, हमेशा के लिए आनंद में भर गए। अब भगवान ने कहा कहे जाओ, अब तो छह भर भी वहां ठहर नहीं सकते, तो फिर देखा कि ये जितने शिशु तो सब चुपचाप खड़े हैं, बच्चे सब चुपचाप है, चारों ओर बोल भी रहे हैं कि देख रहे हैं ये क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं ये लोग, और उसने इतने हमारे कन्हैया ने उनसे क्या कहा समझे तो नहीं कुछ भी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उखल में बंधे श्री कृष्ण की परिक्रमा की, परिक्रमा से फिर दूर से आ दूर रहा नहीं गया, बच्चों को डरते रहे तेरे देवता है तो उनको चार ओर लगे देर में चार सात सात आठ फेरी उनके भी बच्चों के, और फिर देख रहे जहां जहां वो सिंह चरणों को ढूंढ ले के अपनी मस्तक में लगाई सखाओं के चल ढूं इतने तो परिक्रम में प्रनंद से पुनः प्रणाम बद्धे मूखल मानन प्रयोग जगमर विष्णुत्तराम, ये प्रकार देह के दिए प्रवचन निर्विहार वीर वीर दंडवत कर उत्तर दिशा सुधार, बार बार दंडवत करके वो उत्तर दिशा की ओर चल गए। तो मानो ब्रजपुर से रोम रोम से कण कण से धन्य धन्य की ध्वनि जाग उठी, धन्य धन्य ऋषि साप हमारे आदि अनादि निगम नहीं जानते ते हरि प्रगत देह जग धारे, धन नींद धन नाच दशोदा धन आंगन खेलत भय बारे, धन श्याम धन दान बढ़ाई। उन्होंने जाते समय उखल को प्रणाम किया, जो उखल भगवान से बढ़ी उसको प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया, उखल ये धन्य रस्सी ये धन्य हो गई, धन श्याम धन दान बधाऊ धन ऊखर धन माखन प्यारे दीन बंधु करुणा अनुभव हो प्रभु राख दे हम शरण तिहारे सूर श्याम के चल सुख धरे अस्तित्व पर ले धाम सुधारे। इस प्रकार ये तो अपने धाम को लो अब यहां नई मिला हुई। अभी जब वृक्ष गिरे थे तो बड़ा शब्द हुआ था, ये भाई अपने आया कि बड़ा शब्द हुआ तो, लेकिन अब तक वो शब्द निस्तब्ध रहा। शब्द तो हुआ और सारा सारा देव समाज उससे कंपित हो गया, सब जगह उठी हुई। पर भगवान की योग माया ने इस ध्वनि को ब्रज के धराचल पर प्रकट होने दिया। अब तक मई आ जाती और नंद बाबा गौरी आ जाते, सब सखियां आ जाती, इन विचारों का स्तवन और ये उपदेश कैसे होता। तो भगवान की योग माया शक्ति ने मालूम कितने कितना समय लगा होगा, इतने का अक्सर ये ब्रजपुर ये उम्र लग रहा निःशब्द रहा, जहां कोई शब्द नहीं हुआ। बीच बीच शब्द होता था, वो मैया दूर दूर उसके संकटों का शब्द होता, तो बीच बीच में गान करती उनका शब्द होता, ये बजराज महर्षि के नीचे का रज होता, ये शब्द तो होते, तो ये शब्द नहीं हुआ। अब जब ये सब ये दोनों नलकूबर और नलगुरु सवन करके भगवान का वर प्राप्त करके आदेश प्राप्त अब ये शब्द हुआ तो वहां तो निश्चय शंका हो गई। अरे सुना बरता था बड़ा शब्द हुआ था, इतना नीचे गरीब बड़ा शब्द हुआ था, और वो जब शकट गिरा शकटा सिर्फ तो बड़ा शब्द हुआ, तो ये शब्द जो हुआ जरूर पेड़ को राक्षस आया है, उत्पात है। अब या जा रही गया नीलमणि कहां गया, श्याम सुंदर कहां गया, मैया भागी वहां से। अब मैया के प्राण कंठा लगे आ गए, मैया की धमनी में रक्त प्रवाह न रहे, वह गौधी में चलिए जाकर पत्थर के लिए खड़ी रह गई। क्षणभर में लगा तमाम दूत सुंदरियां आस पास की दूतियों से बाबा का आंगन भर गया, नंद बाबा का वो समुदाय भी आ गए। कहते ये जो ब्रज है ना, ये भगवान का धाम, ये सारा इस समय चेतन रहा। जो राजदूत थे बड़ा भारी वन बीच में था, बजपुर के बड़ी उत्तर चालिकाएं थी, पर यहां देशकाल का भेद नहीं है, ये तो तुलना देशकाल है ना। चाहे जब संस्कृत हो जाए और चाहे जब विस्तृत हो जाए, तो नंद बाबा और ये देखने में वहां ये रब सुना ध्वनि सुनी, तो ये जो प्रांगण ये जो बीच का दिन बड़ा विस्तृत था सूचन हो गया और मानो दरवाजे का रूप हो। इस प्रकार से वे सब वहां पूर्वासन सब आगे हजारों हजारों और आंगन इतना बड़ा हो गया कि सब उसमें खड़े हो गए। अब आकर के देखने लगे हो क्या गया, अरे ये तो वृक्ष पड़े रहते थे, ये इतने लंबे वृक्ष मनाली हमारे बाप दादों के कुछ लोगों के वृक्ष थे और बड़े वे मजबूत रहे, उनकी जड़ से कभी खोखली हुई नहीं, तो टूटे कैसे, ये घटना हुई कैसे। चित्त विभ्रांत कह गया भूमि रुद्रत चक्र विदृषि निर्मला गुरु ब्रह्मनिष्ठ विद्या है लक्षण पठन कारण। ये ग्यारहवा अध्याय प्रारंभ हो गया। गोपानंद निंदा दोष सूचवा गुणेर पदते रवन सत्रा जगह गुरु सूष्ट निर्घा के भूषण तथा निंदाविदेव जो वहां गए हुए थे, ये दक्षिण के गर्मी की जो ध्वनि हुई उसको सुन करके सब के सब भय संचित होकर ईशान सिंह कुछ होने गया और भागे और तत्काल आ गए, देखा आकर के वृक्षों के गले हुए तो बड़ा विस्मय हुआ। जिन्हें कैसे इतने बड़े वृक्ष आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, बिना वाचन बिना वर्षन विद्युत प्रबोधन बिना बिना हस्तकथन दोषण केले में पतते दुर्मय बड़ी विराजी किसने, तूफान आया नहीं, बड़े जोर की आंधी आई नहीं, वर्षा हुई नहीं, अकस्मात बिजली भी बड़े जोर से नहीं गई और कोई मछुआरे हाथी भी नहीं आए जो गिरा देते झटझोर कर। ये घटना घटी कैसे, गिराया तो किसने गिराया? बड़ा अद्भुत मन में हो ये तो आशा नहीं कि ये किसी यहां से किसी किसी करती हो रही, पर ये देखा कि बच्चे खड़े हैं पर बच्चों के मन पर डर नहीं, बच्चों के शिशुओं के मुंह पर मुस्कुराहट, तो उनके मन में आया कि कन्हैया तो नजर में, अगर कन्हैया नजर में न होता इसको कुछ हो गया होता कि बच्चों का हमें प्रसन्न नहीं होता, इनके मुख पर तीन मुद्रा है, प्रसन्नता है, आश्चर्य है और जल्दी से कन्हैया की करतूत कहने की त्वरा लगी, बाबा से कह देंगे तो सारा काम ठीक हुआ। तो कन्हैया दिखा नहीं, एक बच्चा आ गया हाथ पकड़ के बोले बाबा देख दे देख दे देख देख वो बैठा वो बैठा। तो ब्रजराज ने देखा आगे बहन दंग रह गए देखकर, कल्पना थी नहीं अनुपम झांकी नहीं झांकी, कमर में पेट में रस्सी बंधी और रस्सी से पीछे उखल बंधा और अपनी घुटनों को दोनों हाथों को पृथ्वी पर चेखे, घुटनों को दोनों हाथों में पृथ्वी पर चेखे, कभी जरा सी उखल को खींच लेती हैं और कभी पत्थर पर फिर बह जाते हैं। इस प्रकार के निगरानी भगवान को देखा और देखा इनके नेत्रों में भर गया डर लगा कन्हैया को कि मटका फोड़ दिया था, सारा दही बहा दिया, मक्खन सारा दंगलों को बांट दिया, अनर्थ हो गया। अब मैया ने तो डांटा ही था, मैया ने कहा था कि तेरे उद्धर है तो भाग देखे कहां जाएगा, ये कहा था मैया ने जाते समय कि तेरे में ताकत है तो जा भाग, मैं तुझे बांध देती हूं। बजात रोज बाबा अब ये कहीं बांटने लगे तो डर गए श्याम सुंदर कि बाबा ने कहीं आके डांटा तो बड़ी मुश्किल होगी, अब तो मैया डांटती तब तो बाबा के पास चले जाते, बाबा के गोद में घुस जाते, बंधे हुए बाबा ये देखा ये सब क्या हो गया और कहीं उनसे कह दिया होगा सबने कि आज कन्हैया ने बड़ा उधम मचाया, बड़ा मटका था तमाम मटके ठोक डाले और हजारों हजारों जो पहले के घरे थे तमाम नष्ट कर दिए, सुनी भगवान बड़ा इस्पाती है ये उदमी, तो डर गए। श्याम सुंदर को इस रूप में देख करके नंद बाबा के मन में आया इससे कुछ कहना नहीं, बच्चा कहीं डर गया और जागर भागत में अपनी इनके मन में स्नेह उमड़ा कि बच्चा कहीं और डर गया, इसके मन में कहीं और भय हो गया कि मनाली बीमार हो जाएगा, अरे भय से बीमारी होती है तो कहीं बीमार उमार हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी, तो बाबा कुछ बोला नहीं उनसे आगे बढ़े और आगे बढ़कर के बाबा ने मन में ही आया पहले ही नारायण हाथ जोड़ ली है नारायण कहने रक्षा की बच्चे की, उखल से मजा बेचारा भाग सकता ही नहीं था, अरे पेड़ गिरे कहीं डाली वाली गिर गई होती तो आज क्या अनर्थ हो जाता, आज तो करिए अच्छा फिर पास जाकर के बाबा कुछ बोले नहीं, मुंह पर जरा मुस्कुराहट बाबा के आगे, बाबा ने देख के हंसा कहीं बच्चा मन में डर न जाए तो हंस दिए नंद बाबा देख करके, उखल के तो श्याम सुंदर समझा कि बाबा हंस रहे हैं, खींचेंगे तो नहीं मारेंगे तो नहीं, अरे तो अब ये उदास से हो गए कि जैसे इशारा किया जैसे मैया ने मान दिया, तो बाबा देखो मैं बढ़ा पड़ा हूं, तो अब ये पास आगे डर निकल गया, करुणा आ गई मन में, बाबा के प्रति विश्वास हो गया कि पास गए, पास जाकर के तमाम अंगों को देखा तो चेतने लग गई, हाथ फिरा फिरा कर नंद बाबा ने पैरों को देखा, हाथों को देखा, पीठ को देखा, सिर को देखा, कहीं खरोच दी डर से नहीं रुका, तो ये बोले बाबा डर तो नहीं है पर मैया ने बांध दिया। दादा ने मैंने सुनी नहीं बात, मैया ने बांध दिया। तो अब ब्रजराज जो है वो नारायण की उपासना करने लगे। ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया, नारायण से बड़ी कृपा हुई, तो नारायण की कृपा से ही और ये बच गया। नहीं तो आज बचने की कोई संभावना थी नहीं। अब सोचने लगे कि फिर ये वृक्ष जो वृक्षों गिरने का तो कोई कारण होना चाहिए ना, गिरने का तो कोई कारण होना चाहिए। वृक्ष गिर क्यों रहे? उरुखलम विकर्षंतम दामना दब्धम च बालकम कश्यपम कुताश्चर्य मुत्पात कातरा। बड़ा मन में क्या आश्चर्य हुआ कि कहीं किसी महाबली दोस्त का तो उत्पात नहीं हो, किसी दानव ने तो आकर के दशा नहीं कर दी, बेचारा बंधा हुआ उखल के। तो इतने बच्चे ने देखा कि बाबा तो राजी है, पर बाबा कहीं गुस्सा उस्सा नहीं है। ये न हम पर खींचेंगे सांस लोग नहीं खींचे, हम तो क्या खींचेंगे, हम तो कह देंगे बाबा हम क्या करें, मैया ने बांध दिया तो हम तो उसको बचाते रहे, बाबा हम क्या करेंगे, बाबा हम पर प्रसन्न होंगे। तो एक बच्चा आया, बच्चे ने आगे बाबा बिछाजा खींचेंगे, बोले बाबा बाबा सुन हमारी तो सुन का क्या बात है, बोलेंगे उनकी खड़े थे यहां पर, तुम ये पूछ रहे पेड़ कैसे उठे, तुम लोग सब बात कर रहे हो खड़े खड़े यहां पर, ये वृक्षों किसने उठाए, तो हमने देखा किसने उखड़ा थे। तो बाबा ने पूछा बताओ किसने उखड़ा, अरे बोले बाबा इस कन्हैया ने वृक्ष उखाड़ दी। कन्हैया ने कैसे उखाड़ दी, डर बाबा हम तो सास रहे ना, मैया का डर तो ना मारेगी, तो बोल रहे थे छुप छुप करके मैया को। चलिए तो इसने कहा हमसे कि बोले हमको खोलो, तो हमने बड़ी चेष्टा की, गांठ खुली नहीं, और ये बिचारा इसके मन में हाथ इसने पीछे हाथ किया तो उखल के गांठ दिखते हाथ उसके आगे नहीं पहुंचे, इधर गांठ लगी इधर मैया ने लगाई नहीं। उसने कहा कि कान को तुम पीछे से ठेलो और मैं खींचता हूं उखल को, जाके फंसा दें उसको किसी प्रकार से, और जो तो पेड़ में तो झटके से टूट जाएगी रसी, तो बंधन खुल जाए, फिर अपने भाग चलेंगे। लोगों ने तो बोले बाबा हमने तो ठेला दिया पीछे से, उसने खींचा, उसने क्या किया बाबा, बड़ा चतुर है ये, उसने क्या किया अंदर गया, तो बाबा ऊंची रहने लेती पूर्वगत निरुखलन विकर्षता है मध्य देने पुरुष हस्त पक्ष है। बच्चों ने कहा कि इसने क्या किया कि जाकर के पास उछल के उधर चला गए, पेड़ के बीच में जो जगह से छेद था उससे उधर निकल गया उस तीर से, और बाबा उखल उखल तिरछी हो गई, तिरछी होकर जैसे गई इसने दिया एक झटका, मेरी खींची थोड़ा आकर टूट गए। बाबा को सुनकर हंसने लगे, बोले देखो बच्चे बात न हो गई, इतने में पेट आया पेट, ये मुंडन का बेटा था पेट आया, इसने कहा अरे बाप बोले बाबा इतने में एक और खेल हुआ, इन पेड़ों में से दो देवता थी और बाबा ने जल रहे थे आग की तरह से, उनको दोष कैसे डर गए, ये आग कहां से निकल गई, इसमें से पूरा आग में दो आदमी भी थे और बड़े बाबा लंबे चौड़े थे, इन लोगों से बड़े लंबे और तना उनके मालूम क्या उन्होंने पहन रखा था, चमचमा रहा था सब, उनकी देह चमचमाती, उनके गहने चमचमाते, तो बाबा ये दो निकले और वो निकल करके इस कन्हैया के चरणों पर गिरने लगे। कन्हैया हंसता और ये चरणों पर गिरते, और फिर बाबा हमको सुंदर समझाया नहीं, बहुत देर तक हाथ जोड़े कन्हैया के सामने गीत गाते रहे क्या जाते मैडम, और फिर बाबा इस कन्हैया ने भी हाथ नचा नचा कर यूं कर करके कुछ कुछ बातें कही से, अब बाबा क्या कहा सो तो हमको पता नहीं, पर कहा जरूर ये गाते हैं ये कहते हैं। फिर बाबा इतने में सुबह उठा बोले बाबा तेरे मैं बताऊं, बाबा हम सभी ने कहा कि दोनों निकले तो कन्हैया से बात करके उसको हाथ जोड़ करके उन्होंने क्या किया कि कन्हैया की फेरी भी कन्हैया की फेरी भी चल कर हम लोग तो भागे तो हम लोग डर गए तो कहीं पकड़ वाले हमको तो खड़े हो गए तो हमारी फेरी देने लगे हमारे फेरी दे दे करके और फिर बाबा ये तो यहां की धूल ले लेकर के सिर पर डालने लगवाओ यहां की धूल ले लेकर के सिर पर डालने लगे तो बाबा हमको सिर्फ चकित हो गए कि ये कौन है क्या तमाशा कन्हैया कर रहा है कन्हैया तमाशा करने बहुत जानता है तो उल्लास में भरकर जब बच्चे हैं बच्चों के मन में न भाव है न आश्चर्य है उनके मन में ये बात तो आई नहीं कि ये कोई श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य है वो भगवान के नाम से सखा है ये हमारा ये देवता है तो मान क्या थी वो देवता ने नाम नहीं सुना सुधन बता दिए तो श्री कृष्ण के बल से कोई दक्षिण खड़े हुई ये बात उन बच्चों के मन में नहीं थी उनके कोई आश्चर्य नहीं था और न उनके मन में भय था ये तो समझ गए कि ये तो भैया ऐसे करता ये क्या उठा था तो ब्राह्मण देवता आए थे वहां पर वो याजक लोग कुछ आए थे उन याजकों के मन में बात बचे वे समझने लगे कि क्या बात है ये बच्चा तो उखाड़ सकता नहीं और इसमें कोई ईश्वरता है स्वयं ये भक्तनी होते हैं जो केवल विज्ञान होते हैं ये फंसते हैं तर्क जाल में ये दिखलाया लोके तो मुक्तम जगह निखटे थे तो चेतन वाले से उत्पादन में सर्वे क्योंकि संदिग्ध चेतक था कुछ लोगों ने कुछ वहां पर आए थे लोग उन लोगों ने देखा उनके मन में मुझे ये बात जो थी कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ डाला और ये श्री कृष्ण जो है इसने पूछना को छह दिन का था मार दिया था इतना वक्त को इसने मार दिया और गाड़ा लूट दिया वो बात तो सुनी थी तो शायद को छोड़ दी पर वो तर्क वितर्क में बड़े रहे उनके मन में कोई बात सिद्ध होने नहीं वो तर्क ही रह गए तो कहते हैं कि भगवान के संबंध में जो तर्क करते हैं तर्क में रह जाते हैं तर्क का जंगल उन्हें कभी पार होने देते ही नहीं फंसे रहते हैं न वो भजन कर सकते हैं और न वो भगवान की ईश्वरता को ज्ञान करके इसके तत्व को जान सकते हैं वो तो ठीक निश्चय नहीं कर सके उन्हें खड़म कर संतन दामना बंधन समाकलगन विलोक नंबर प्रहसन भगन बिंदुक है अब वो नंद बाबा ने देखा कि बच्चों ने फिर आगे कहा कि बाबा देखो हम सच कहते हैं तो हमारी बात मानो तो फिर नंद बाबा हंस पड़े तो नंदाज हंसे बोले बच्चे जो हैं हाँ अगर तुम ठीक कहते हो बेटा ठीक कहते हो तो मैया ने कर दिया बच्चों को भुला करके किस तरह से हंसा दें भूल तो आप रहे हैं तो फिर तो अब वो बच्चों की तरफ आगे बढ़े मन में तो विषाद आ गया नंद बाबा के सुन लिया था कि यशोदा से ऐसा काम हुआ करे